लघु वासुदेव मननम। कल हम लोगों ने मंगलाचरण में जो आचार्य वासुदेव यति ने भाव व्यक्त किया है उसके ऊपर श्रवण किया। चार श्लोकों में आचार्य ने जो मंगलाचरण किया है, चौथा श्लोक कुछ रह गया था। बालानाम उपकाराय मम विज्ञान सिद्धये तत्र श्री बाल गोपाल कृष्ण सन्निहितो भवेत्। कोमल मति वाले बालक, उनके उपकार के लिए जो महापुरुष दूसरों के कल्याण की बात सोचते हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे महात्माओं में कई लोग बोलते हैं, महाराज ये जो महीना महीना की कथा चलती है ना, बहुत लंबा लगता है। हमने कहा एक महीना तो लंबा लगता है, लेकिन 11 महीना छोटा लगता है क्या? बाकी 11 महीने क्या करोगे? चलो एक महीना तो लंबा लगता है, लेकिन 11 महीनों का? कहने का मतलब है, जो हमारा शास्त्र कहता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करो। तो यहां पर आचार्य बोलते हैं बालक के उपकार के लिए तो है ही, साथ में मम विज्ञान सिद्धये, जो गुरु के मुखारविंद से हमने श्रवण किया है वह अभी अपरोक्ष रूप में नहीं हुआ, परोक्ष रूप से तो ज्ञान हुआ है, तो विज्ञान सिद्धि अनुभूति के लिए भी शास्त्र का बार बार जो है आलोडन विलोडन करना चाहिए, अर्थात स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा इसका चिंतन चलते रहना चाहिए। इससे होगा क्या? तो तत्र श्री बाल गोपाल कृष्ण, जो बाल भगवान श्री कृष्ण बाल मुकुंद भगवान, उनके सन्निधि प्राप्त होगी, उनके सहायता से ही हम इस भवसागर से पार हो सकेंगे। ये मंगलाचरण में जो बताया है। अब आगे लघुवासुदेव मरणम गद्यात्मक है, संस्कृत के वाक्य हैं। बाकी ग्रंथ आप लोगों ने उपदेश सहस्री कभी सुनी है? नहीं सुने? अच्छा। तत्वानुसंधानम? नहीं। अभी तो फिर बहुत कुछ सुनना बाकी है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो उसी तरह से ये गद्यात्मक है। इह खलु धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम चतुर्णाम पुरुषार्थानाम मध्य मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। क्यों? तो हेतु दे दिया नित्यत्वात्। इस संसार में चार प्रकार के जो पुरुषार्थों का नाम गिनाया है, यह मतलब अस्मिन लोके, निश्चित रूप से ये चार पुरुषार्थ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन इन चारों पुरुषार्थों के मध्य मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। जैसे भगवान ने गीता में चार प्रकार के भक्तों का नाम गिनाया, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्त किसको कहा? ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, उदारा सर्व एवैते। तो धर्म अर्थ और कामना की प्राप्ति के लिए भी प्रयास तो करना ही पड़ता है, लेकिन मोक्ष के लिए जो प्रयास किया जाए, और मोक्ष की श्रेष्ठता इन तीनों की अपेक्षा क्यों है? तो हेतु दे दिया नित्यत्वात्। क्योंकि धर्म और मोक्ष यही मूल रूप से प्रतिपादित हैं वेदों में। हाँ, मूल रूप से कौन है? धर्म अर्थ धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम तो उसके साधन है। वास्तव में लक्ष्य होना चाहिए कि धर्म कैसे करें और धर्म पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, क्यों तो नित्यत्वात्, नित्य होने के कारण। क्या है इसकी नित्यता? तो छांदोग्य उपनिषद की यह श्रुति आप लोग बहुत बार श्रवण किए हो, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उसको फिर लौट के आना नहीं पड़ता। जब हम लोग नहीं आए होंगे इस मृत्यु लोक में, उससे पहले जब हमें आना पड़ा होगा ना, तो जहां से आए वहां से इच्छा नहीं थी आने की, लेकिन आना पड़ा। और अब आ गए हैं तो अब जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जाना भी पड़ेगा। जैसे वहां आने की इच्छा नहीं थी तो यहां आना पड़ा, वैसे अब यहां से जाने की इच्छा नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा। वो अभ्यास हो जाता है ना, अब क्या शेड्यूल बन गया ना हमारा, रोज उठना, नहाना, धोना, घूमना, लोगों से मिलना, तो लगता है यही सब कुछ है। इससे भी पहले की विचार बात सोचो तो जो अभी हम मिले हैं वही बात चल रही थी। बोले भाई आत्मा में दुख का जो है, कल आप लोगों ने सुना था ना, आत्मा के दुखों का कारण शरीर। तो अरे मधुसूदन जी ने पूछा कि स्वामी जी आत्मा में तो दुख होता नहीं, आपने कहा आत्मा के कारण शरीर है दुखों का, तो इसका मतलब है आरोपण होता है आत्मा में, हम लोग आरोप करते हैं। अब यहां पर जो वातावरण मिला हुआ है ये भी एक तरह से आरोप कर लिया हमने, मान लिया है कि मैं बंबई वाला हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरी ये जाति है, हमारे ये मित्र हैं, ये शत्रु हैं, सब माना हुआ ही तो है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम जहां से आए थे वहां से भी जबरदस्ती आए, और यहां से भी जाएंगे तो जबरदस्ती ही जाएंगे, जाना तो नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ेगा। इसलिए कह दिया ऐसी जगह में जाओ जो अपनी जगह है। जैसे हम दुनिया में कहीं भी घूमते हैं अपने घर में आने के लिए छटपटाते कि नहीं, क्या बोलते गुजराती में, धरती ना छेड़, क्या धरती ना छेड़ो घर, धरती के जो अंतिम सीमा है वो अपना घर है। हाँ, अपने राजस्थान में मारवाड़ में बोलते ठिकाने का ठाकुर होता है, बोले हाँ यदि अपना ठिकाना है तो आप ठाकुर हो। बोले अरे इसकी बात को क्यों मानते, इसका कोई ठिकाना है? तो जिसका ठिकाना नहीं उसके ऊपर हम विश्वास भी नहीं करते। इसलिए सरकार ने एक आधार कार्ड बनाना शुरू किया, निराधार को क्या दो आधार, और उससे जो है आपके पूरे बायोडाटा उसमें मिल जाएगा सबके साथ। अभी मोदी सरकार ने कहा इसको लिंक करो, जोड़ो, जहां कहीं भी आधार कार्ड को जोड़ दो तो इससे पता चल जाएगा। यहां तक बताया कि छोटे बच्चे भी कहीं खो जाएंगे ना तो उसके फिंगरप्रिंट तो होगा ये, तो कंप्यूटर में अपने आप उसका पूरा निकल आएगा, कहां का है, कौन है, किसका बच्चा है, मतलब वो भी आसानी से अपने ठिकानों को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो है न च पुनरावर्तते, न च पुनः आवर्तते, आवर्तन लौट के नहीं आना पड़ता। पदच्छेद करेंगे, श्रुति का वाक्य है, न कई जगह तो पाठ भेद भी कर देते, न स पुनरावर्तते, लेकिन स नहीं है, च है, न च पुनरावर्तते, पुनः आवर्तते, उसका पुनः आवर्तन नहीं होता, लौट के नहीं आता। ये श्रुति का उदाहरण है। लेकिन इतरेषाम त्रयाणाम न तथात्वम, धर्म अर्थ और जो काम है इन तीनों का ऐसा फल नहीं है। लेकिन मोक्ष का फल ये है कि एक बार अपने ठिकाने में पहुंच गए तो यद गत्वा न निवर्तन्ते। कितनी बढ़िया बात कह रहे भगवान कि यद गत्वा, जहां जा करके न निवर्तन्ते, लौटता नहीं है, वही तद धाम परमम, वह परम धाम है अपना, बाकी तो केवल धाम है, स्थान है, लेकिन परम धाम क्या है, अपना जो मुख्य ठिकाना है, स्थाई एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहां जो हम लोगों को मिला हुआ स्थान है, ये सच्चा है कि झूठा है, टेम्पररी है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा कि व्यवहारिक सत्ता में जो भी सत्य का प्रयोग होता है वो सापेक्ष है, और ये जो हमारे अपने जो मुख्य ठिकाना है वो निरपेक्ष है। लोक में तो सारे सत्य का व्यवहार चलेगा। आजकल तो विटनेस के भी सिग्नेचर कराते हैं, पासपोर्ट बनवा तब भी लेते हैं ना विटनेस का, और बैंक में जो लोन दिलवाते उसको क्या बोलते हैं, गारंटर क्या, वो तो बहुत खतरनाक है। उसमें तो यदि लेने वाला भाग गया तो गारंटर को देना पड़ेगा। तो ये जो दुनिया की गारंटी लेना, दुनिया के लिए विटनेस बनना, ये सब के सब सापेक्ष है। लेकिन निरपेक्ष कौन है, तो यही कह दिया नित्यत्वात्। मोक्ष ही एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी पुरुषार्थों में इसकी गिनती है, जहां से लौट के आना नहीं पड़ता। लेकिन इतरे शाम त्रयाणाम न तथात्वम क्यों अनित्यत्वात्, हेतु दे दिया। धर्म का फल मिलेगा, भोगोगे, समाप्त। कामना के भी यही हाल है, धर्म अर्थ और अर्थ का भी यही हिसाब है। लेकिन मोक्ष एक बार मिल गया तो जो मुक्त हो गए वो हो गए। और हम लोगों के अभी जो ये जन्म जन्मांतर की प्रवृत्ति बनी हुई है, लघु वासुदेव मरणम, आप सुनोगे कहोगे ऐसी बातें हैं क्या यहां पर। एक तो पिघली हुई अवस्था है वासनाओं की, और एक जमी हुई अवस्था है। वासना जब जमी हुई हो तो उदाहरण देते हैं आचार्य कैसा, तो जैसे लाहा, लाहा का संस्कृत में बोलते जतु, जतु पिंड, जतु पिंड का मतलब होता है पेड़ से जो निकलता है ना, लासा क्या बोलते हैं, लाख लाख, लासा, लाहा, ये अलग अलग नाम है। और जमे हुए लाख के अंदर सोने के चूर्ण, सोने के भस्म कह लो या जो भी कह लो, मतलब चमकते हुए सोने के कण उस जमे हुए लाख के अंदर चिपके हुए हैं। ऐसे ये जीवात्मा रूपी जो चिंगारी है परमात्मा के, ये वासना रूपी लाख के अंदर ऐसे चिपके हुए हैं। यहां से इसको कैसे पिघाल के निकालना है, ये आगे इसका सुस्पष्टीकरण होगा। जितने भी ग्रंथ आप पढ़ोगे ना, सब में कुछ न कुछ नया दृष्टांत, नई बातें तो होती है, यही आचार्यों की विशेषता रही है। तद यथा इह कर्मचितो लोकक्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकक्षीयते, ये भी श्रुति का उदाहरण है। ऐसा देखा गया है कर्म से प्राप्त होने वाला लोक भी समय आने पर क्षीण हो जाता है, पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त किया गया लोक भी समय आने पर समाप्त हो जाता है, इसलिए ये सब के सब अनित्य हैं। कितने भी अच्छे कर्म करोगे, अच्छे फल के रूप में अच्छे लोकों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन समय आने पर पुनः वह नष्ट हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। लेकिन मोक्ष की विशेषता है वह नित्य है, हमारा स्वरूप है, इसलिए इसी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। चार प्रकार के पुरुषार्थों में भी मोक्ष को परम पुरुषार्थ क्यों कहा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नित्य होने के कारण हमारा ये स्वरूप है, श्रुति कह रही है, स्मृति कह रही है कि जहां जाने के बाद फिर लौट के आना नहीं पड़ता। अभी हम लोग यहां आए हैं, इसका मतलब पहले ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो यहां आना पड़ा, और अभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो फिर कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए एक महापुरुष बोल रहे थे एक बार, किसी ने कहा महाराज बड़ा कष्ट है जीवन में, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा सबसे बड़ी गलती हम लोगों से हुई कि जन्म लेना पड़ा, जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती हुई। और अभी भी हम लोग किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मरना न पड़े, प्रयास इसी के लिए जारी है। और होना क्या है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तो फिर क्या करना चाहिए। बोले जन्म न लेना पड़े इसके लिए प्रयास करो, मरना न पड़े इसके लिए प्रयास करना व्यर्थ है, वो तो निश्चित है जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोबारा जन्म न हो इसके लिए जरूर हम प्रयास कर सकते हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है। और इसी के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। कहीं पर आता है ना कि मृत्योर विभेषी किम मूढ़, हे मूढ़ तू मृत्यु से क्यों डरता है। मृत्योर विभेषी डरता है, विभेषी मध्यम पुरुष का प्रयोग है व्याकरण के हिसाब से, मूढ़ तो मूर्ख हो। मृत्योर विभेषी किम मूढ़, क्योंकि जो भी जन्म लेता है कुरु यत्नम अजन्मनि, यत्न करो तो जन्म ना लेना पड़े इसके लिए यत्न करो, मरना ना पड़े इसके लिए यत्न करना, वो तो वैसा ही है जैसा उदाहरण दिया शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग रेगिस्तान में चलता है, शिकारी को जब देखता है वो तो डर के मारे सोचता है कि मुझे ना मार सके, इसके लिए अपने मुंह को रेत के मांद बना करके उसमें अपने मुंह को छिपा लेता है। मुंह तो छिपा हुआ लेकिन बाकी धड़ तो बाहर ही है, उसमें गोली लगेगी तो बचेगा क्या। बस इतना ही हम लोगों का भी हिसाब है। जब बोलते हैं ना अरे पंचतंत्र में आता है ना हमेशा किसको याद करो, कि ये जो मौत है मृत्यु चोटी पकड़ करके खड़े, बस हमारे और मौत के बीच में कितनी दूरी है उसको कभी नापना मत, लेकिन याद जरूर रखना इसके ऊपर हाथ उसका पड़ा हुआ है, इसे बस पकड़ना बाकी है। वो तो डेट निश्चित है ना, किस दिन किस समय कैसे पकड़ेगा, वो तो फिर फट से उठा लेगा, लेकिन हमेशा मौत हमारी छाया बनकर के चल रही है, उससे हम बच नहीं सकते। तो इसीलिए जो इस बात को याद करते रहते हैं, मृत्यु और विभेषी किम मूढ़ भीतः मुंचति किम यमः, क्या जो डर जाता है उसको यमराज छोड़ देते हैं क्या। बोले नहीं, यदि नहीं डरना चाहते हो, इससे अभय प्राप्त करना चाहते हो तो जन्म ना लेना पड़े इसके लिए प्रयास करो। अब हम लोग किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अब यहां जो बैठे हैं प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में, यहां इसीलिए आए कि अब जन्म ना लेना पड़े। एक बार लिया और इससे पहले भी कितने जन्म हुए कोई गिनती नहीं, और अभी यदि नहीं संभलेंगे तो यह चेद वेदित असत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मान लोकाद अमृता भवंती केनोपनिषद श्रुति कहती है। अतः आचार्य बोल रहे हैं लघु वासुदेव मननम में हेतु दे रहे हैं, ज्ञानाद एव मोक्षः, मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे, तो ज्ञानाद एव हेतु दे दिया, ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा उपाय है ही नहीं जो मोक्ष प्राप्त हो सके, पक्की तरह से गांठ बांध लिए। सच मोक्षो ब्रह्म ज्ञानाद एव सिद्ध्यति, इस मोक्ष की सिद्धि होती है ब्रह्म ज्ञान से ही, एव लगा करके जोर दिया इस बात पर, जोर दिया गया है, बल दिया गया है कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, श्वेताश्वतरूपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, तैत्रीयोपनिषद का भी उदाहरण दिया, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुतिभ्यः। तम एव विदित्वा, तम परमात्मानम एव, उस परमात्मा को ही जान करके मृत्युम अत्येति, अति मृत्युम एति, अर्थात मृत्यु का वह अतिक्रमण कर जाता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते, यही पर जो है। अच्छा, हम लोगों के जन्म का हेतु क्या है मालूम है ना, स्थूल शरीर तो सबका छूटता है लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसका आवागमन हो रहा है इसको भंग करना, इसको नष्ट करना है, तो ये ज्ञान के द्वारा होगा। स्थूल शरीर तो जो वेदांत पढ़ते हैं उनका भी छूटेगा, जो नहीं पढ़ते उसका भी छूटेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी किसका छूट जाता है, जिसने ब्रह्मविद आपनोति परम, परम आपनोति, उस परम पद को कौन प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्मविद्ता ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुतिभ्यः अनेक श्रुतियों का उदाहरण मिलता है, जिसमें से दो उदाहरण यहां पर आचार्यों ने दिया है। अब ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसको जानने का क्या तरीका है, आप लोग तो ब्रह्मज्ञानी हो इसमें कोई संदेह नहीं। आप हंसते क्यों भाई, संदेह है क्या? अच्छा सब लोग हंस रहे हैं तो ठीक है, यदि कोई एक दूसरे के लिए हंसे ना तो बुरा लग जाएगा कि मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं जो मेरे ऊपर हंस रहे हो, सब हंस रहे तो लगता है कौन किसके लिए हंस रहा है, हम सब अपने लिए हंस रहे। आरती में गाते हैं, आनंद वन आश्रम में कथा में जब आरती होती है तो क्या आता है वो, मैं मुंह रख क्या, वहां नहीं बोलते वो लोग, वो नीचे वाला बोलते, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, दो बार बोलते लेकिन वही बोलते हैं। और लोग मैं मुंह रख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, एक बार तो मैं मुंह रख खल कामी, फिर मैं सेवक तुम स्वामी, और आरती के बाद बाहर जाओ और बोले आइए मूरख जी क्या हाल है, बोले अरे हमको मूरख बोलते हो, अभी तो आरती में आप स्वयं बोल रहे थे कि मैं मूरख खलकामी। तो अपने आप को अज्ञानी बोलना ज्ञानी बोलना अच्छा नहीं लगता। केनो परिषद कहती है यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, जो बोलता है मैं जानता हूं वो नहीं जानता, आज जो नहीं जानता वो भी नहीं जानता, तो फिर कौन जानता है, बोले इन दोनों को जो जानता है वही जानता है। अपने ज्ञान और अज्ञान दोनों को जिसने जान लिया वास्तव में वही ज्ञानी है। ज्ञान होने के बाद तो मौन धारण कर लेना चाहिए, बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस ब्रह्म को जानने का तरीका क्या है, ये हमारे वेदांत की अपनी मर्यादा है। तच्च मतलब वह जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान अध्यारोपापवादाभ्याम ज्ञातव्यम, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा वह ब्रह्म जानने के योग्य है। जब लोग शंका उठाते महाराज रस्सी में सांप दिखाना, सीपी में चांदी को दिखाना, ये सब आप लोग इतने लंबे चौड़ी प्रक्रिया क्यों करते हो, बोले इसी से ब्रह्म ज्ञान होता है, इसके ये तरीका है। जैसे रस्सी में सर्प का आरोप है, सीपी में रजत का आरोप है, उसी प्रकार से उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस जगत का आरोप है। अभी ये जगत उस परमात्मा से हम लोगों को अलग दिख रहा है कि एक दिख रहा है, एक दिखने लग जाए तो हो गया ज्ञान, और जब तक अलग दिखेगा तब तक क्या इसका नाम पड़ेगा, अज्ञान। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन करना ही ज्ञान है। और ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान किसका नाम है, तो मन विषय रहित हो जाए इसी का नाम ध्यान है। तो ज्ञान की जब भी बात आएगी तो ये ध्यान रखना है कि अभेद दर्शनम, जगत दिख तो रहा है लेकिन रस्सी में जो सांप दिख रहा है, रस्सी ही सांप के रूप में दिख रही है। इसलिए एक जगह पंक्ति आती है, आप लोगों ने पहले भी लिखी है, अधिष्ठानत्वमात्रेण कारणम ब्रह्म गीयते, ये जो ब्रह्म परमात्मा जगत का कारण बनता है कैसा, तो अधिष्ठान मात्र होकर के। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त का अपना कोई अस्तित्व है क्या, रस्सी में जो सांप दिख रहा है, सांप दिखने के लिए भी किसका होना जरूरी है, रस्सी का। समस्या ये है कि अभी रस्सी में दिखने वाला जो सांप है रस्सी के ज्ञान न होने के कारण दिख रहा है। रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप का तो दिखना अपने आप बंद हो जाएगा। और आप लोग इसका उदाहरण सुने हो पहले भी, सीधे वेदांत की पंक्ति बोलो तो कई लोगों को समाधि भी लगने लग जाती है, थोड़ा बीच में उठाने के लिए बोलना पड़ता है। अच्छा, रस्सी में जो सांप आया कहां से आया, इसका कभी विचार किया आप लोगों ने? संस्कार भी होगा नहीं? संस्कार कब होता है? अनुभव पूर्वक। और अनुभव कहां हुआ है? जैसे मौत से हम लोगों को डर लगता है, तो ये डर कहां से आया? तो ये भी संस्कार ही तो है, क्योंकि इससे पिछले जन्मों में भी हमने मौत का सामना किया। तो वो जो मृत्यु का संस्कार है वो इस जन्म में भी हमें भयभीत करता है, वहां भी संस्कार ही हेतु दिया है। तो रस्सी में सांप का जो भ्रम हो रहा है या जो सांप दिख रहा है, तो जो पहले संस्कार पड़ा था, अब छोटा बच्चा है वो तो सांप को भी रस्सी समझ के पकड़ने जाता है, उसको थोड़ी पता है ये सांप है काट लेगा। और जिनको अभी सांप का पहले सामना हुआ, पता चल गया कि जहरीला होता है, काटता है, काटने से आदमी मर जाता है, तो वो जो भय का संस्कार है, तो रस्सी में झूठे सांप को देख करके भी जो सत्य भय है, जो कंपन है शरीर में, रुंगटे खड़े हो जाना, डर लगना, भागना, ये सारा काम हो जाता है। तो रस्सी में जो सांप आया कहां से आया? संस्कार से आया, ठीक है। लेकिन जब सांप में रस्सी दिखना बंद हो गया तो सांप फिर गया कहां, इसके ऊपर कभी विचार किया आपने? कहां चला जाता है? तो एक उदाहरण सुन लो। एक बार क्या हुआ, आप लोग सुने हुए, बोलना मत बीच में, सुनते रहो बस। तो क्या हुआ, एक बार एक आदमी कहीं से घोड़ा चुरा के लाया, सोचा चोरी का माल है, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा है कि इसको बेच के जो दो पैसे बनेंगे वही ठीक है। घोड़ा बेचने चला गया। अब चोर चोर मौसेरे भाई, जैसा वह स्वयं था ऐसे खरीदने वाला जो ग्राहक था वो भी आया, बोला हाँ भाई घोड़ा बेच रहे? बोला हाँ। कितने का है? इतने का है, पुराने जमाने की बात, 20,000 का है घोड़ा। इतना महंगा, क्या बात है? बोले अरे बाबूजी आप घोड़े लोगे ना, ये इतना काम करता है, इतना चलता है, कई किलो मील तक आपके जो है यात्रा करा देगा, थकता नहीं है घोड़ा। हाँ हाँ, वो तुम्हें बेचना है तो प्रशंसा तो करोगे ही, लेकिन हमको भी तो पैसा देना है, तो हम भी तो पहले माल देखेंगे, जैसा तू बता रहा है वैसा ही घोड़ा है या कुछ इसमें कमी भी तो नहीं है, तो जरा इसके परीक्षण करने के लिए मैं देख तो लूं चला करके थोड़ा। हाँ, आप चप्पल भी खरीदने जाते हो थोड़ी देर पहन के तो चल के तो दिखाते हो दुकान में, बोलता है आप थोड़ा ट्राई करके यहीं देख लो। तो घोड़े को चलाते हुए ले गया, तो ले ही गया। आसपास वाले को पता था चोरी का माल था, घोड़ा गया बेचने के लिए। लौट के आया, लोगों ने पूछा भाई घोड़ा बिक गया? बोले हाँ बिक गया। कितने में बिका? बोले जितने में आया था उतने में बिका। तो रस्सी में जो सांप आया था, बोले कहाँ गया? बोले जहां से आया था वहीं गया। हमारी बुद्धि की उपज है रस्सी में सांप दिखना, और उसी बुद्धि में जब हम अज्ञानी थे तो उसी बुद्धि के कारण अज्ञानी थे, और जब ज्ञानी हो गए तब भी वो ज्ञान कहां हुआ? उसी बुद्धि में तो हुआ है। बस इतना था कि अज्ञान के आवरण से ज्ञान ढका हुआ था, आवृत था। और इसके ऊपर और भी चिंतन होगा, विचार होगा कि आवृत ज्ञान सत और चित्तक के अनुभव तो कराता है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। आनंद का अनुभव होगा कब? जब ज्ञान निरावृत हो जाएगा। हाँ, निरावृत मतलब आवरण रहित ज्ञान ही आनंद का हेतु है। ज्ञान तो हो गया, अभी सबको मालूम है मैं सचित हूं, क्योंकि मैं हूं ये भी सबको मालूम है, और मैं अपने को जानता हूं ये भी सब लोग जानते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। कभी सुखी, कभी दुखी, कभी दीनहीन, कभी लगता है कि मैं ही सबका मालिक, कभी लगता है मैं सबका नौकर। ये जो बार बार मन में आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से यह ज्ञान आवरण रहित नहीं हुआ है। निरावृत ज्ञान ही आनंद की अनुभूति में हेतु है। अभी ज्ञान तो हुआ लेकिन पूरी तरह से निरावृत नहीं हुआ है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते बालानाम उपकाराय तत्वज्ञ कल्पितः क्रमः। तत्ववेत्ताओं के द्वारा अध्यारोप और अपवाद की कल्पना की गई है, उस ब्रह्म विद्या की परंपरा के लिए ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए की प्रक्रिया बनाई गई कि अध्यारोप और अपवाद पूर्वक ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। कल भी आप लोगों से पूछा था, अध्यारोप का यदि मोटा मोटा अर्थ किया जाए तो अध्यारोप का मतलब है अज्ञान और अपवाद का मतलब है ज्ञान, क्योंकि रस्सी में जो सर्प का आरोप है ये अपने आप में अध्यारोप ही तो है। ये अधिकृत्य आरोप, रस्सी को आधार बना करके जो सांप का आरोप है, इसे इसमें नाम पड़ जाएगा अध्यारोप। केवल आरोप नहीं है, अध्यारोप। आधार तो रस्सी ही है सांप के लिए, उसके बिना तो आरोप लगा ही नहीं सकते आप। और आरोपण भी होता है सजातीयता का, रस्सी में मकान का भ्रम तो नहीं होगा, रस्सी में कुर्सी तो नहीं दिखेगी, रस्सी से मिलते जुलते जो चीजें होगी तो उसमें बहुत सारे उदाहरण देते हैं, भूछिद्र दिखना, जमीन में जो दरार पड़ जाती है, जलधारा दिखना। मान लो किसी बर्तन में आप पानी ले जा रहे हो और कहीं उस बर्तन में छेद हो या थोड़ा थोड़ा छलकता गया हो पानी, तो जब वो गिरता है ना मिट्टी के ऊपर कहीं देखोगे तो गीला जो होता है लंबा लंबा, तो ऐसा भी भ्रम हो जाता है किसमें, रस्सी में। जलधारा का भ्रम होना, भूछिद्र का भ्रम होना, माला का भ्रम होना, किसी के हार तो नहीं गिर गया, इसका भी भ्रम हो सकता है, लेकिन रस्सी में सर्प का भी भ्रम तो होता ही है, लेकिन मकान का, कुर्सी आदि का भ्रम नहीं होता। सजातीयता, रस्सी से मिलते जुलते चीजों का भ्रम होगा। ये जो रस्सी में सर्प का आरोपण हुआ इसका नाम है अध्यारोप, इसी को बोलते अज्ञान। और अपवाद, नायम रज्जु, नायम सर्प इयम रज्जु, यह सर्प नहीं है रस्सी है। रस्सी में सर्प का जो अध्यारोप है, जो आरोप है, इसी को बोलते अयथार्थ ज्ञान। अर्थात ज्ञान तो है, सांप दिखा है, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं दिखा, लेकिन अयथार्थ है। और जब सांप नहीं है रस्सी है, इसी का नाम पड़ जाएगा सम्यग्ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तच्च ब्रह्म अध्यारोपापवादाभ्याम ज्ञातव्यम। आगे आचार्य बोल रहे हैं, आरोपित निवृत्त्या एव अधिष्ठान ज्ञानोदयात्। आरोपित अध्यस्त जो वस्तु है, जो सांप है वो अध्यस्त है और रस्सी अधिष्ठान है। आरोपित मतलब अध्यस्त कह सकते हैं। आरोपित के निवृत्ति के द्वारा ही अधिष्ठान ज्ञानोदयात। जब तक सांप दिख रहा है तब तक रस्सी उससे ढकी हुई है, किससे, सांप से। और सांप जैसे आया था वैसे चला भी जाएगा, जैसे उसका घोड़ा बिक गया था, जितने में आया था उतने में गया, तो जिस बुद्धि से आया है उसी बुद्धि में चला भी जाएगा। तो अधिष्ठान ज्ञानोदयात आरोपित निवृत्त्या एव, आरोपित के निवृत्ति के द्वारा ही अधिष्ठान का ज्ञान उदित होता है। ये एक पंक्ति है अपने आप में और आचार्य के बोलने की शैली है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अध्यारूपापवादाभ्याम ज्ञातव्यस्तत्व निर्णय, तत्व का निर्णय करने के लिए अध्यारूप और अपवाद की जो शैली है ये बहुत ही सरल है। इसलिए श्रुतियों में जो उदाहरण दिया है, कैवल्य उपनिषद न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न एके अमृतत्वमानसुहु, कोई चाहे कि कर्म के द्वारा उस अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है तो श्रुति ने निषेध कर दिया न कर्मणा, कर्मों के द्वारा जो मिलेगा वो अनित्य होगा और ये नित्य है। हां एक बात अलग है, पहले आप लोगों ने सुना है ध्यान में होगा, तो कर्म अनित्य होकर के भी यदि उन कर्मों का ज्ञान के लिए विनियोग किया जाए तो अनित्य कर्म से नित्य आत्मा की भी प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन क्रमशः। साक्षात तो कर्म ज्ञान का साधन नहीं है, लेकिन जैसे कर्म का बोलते निष्काम कर्म आदि करो अंतःकरण की शुद्धि होगी और इस तरह से ज्ञान का जो उदय होता है उसमें कर्म को हाँ परंपरा से क्रम से साधन माना जा सकता है, अन्यथा कर्म से सीधे अमृतत्व की प्राप्ति तो नहीं ही होती है। ये श्रुति कह रही है न कर्मणाम न प्रजया, इसलिए एषणा त्रयस्य त्याग एव सन्यासी अधिकार, ईशावास्य उपनिषद में भाष्यकारों ने इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा विचार किया है। कोई कहे कि धन आदि देकर के हो जाए तो कहा न धने न, धन के द्वारा भी नहीं होगा, फिर किसके द्वारा होगा, बोले जिन जिन के द्वारा तुमने नाम गिनाया ना इन सबको छोड़ करके होगा। त्यागे न एके अमृतत्वमानसु इति वचनात् तस्मात् मुमुक्षुणा, मुमुक्षु किसको बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, और जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसको क्या बोलेंगे, मुमुक्षा, और इच्छा वाले को बोलेंगे मुमुक्षु। ये संस्कृत में ऐसे बनता है, जैसे बुभुक्षु, बुभुक्षु मतलब भोजन करने की इच्छा वाले, भूख लगी है जिसको, और बुभुक्षा मतलब भोजन करने की इच्छा, तो मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा का नाम है मुमुक्षा। अच्छा मुक्त किससे होना चाहते हो, जिससे छूटना है तो जिससे हम पकड़े गए हैं पकड़े हुए हैं उसका भी तो ज्ञान होना जरूरी है ना। अभी हम लोग अज्ञान में पड़े हैं, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कोई इससे छूटने का प्रयास करेगा क्या। कल आप लोगों ने सुना था कि जो ये बंधन और मोक्ष की व्यवस्था है, मांडू के कार्यक्रम में किसमें आता है, इत्येषा परमार्थता न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ क्या है, न निरोध, चित्त वाले मानोगे तो चित्त का निरोध करना पड़ेगा, और जब कहोगे मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि अहंकार चित्त में हूं ही नहीं, तो फिर किसका निरोध करना है, समस्या यहीं पर तो शुरू हो गई। आचार्य बोलते हैं देहात्म प्रत्ययो यदवत्, देह को आत्मा मानने में हम लोगों को कोई संकोच हो रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि देह कभी भी आत्मा नहीं हो सकती, सबको यह अनुभव होता है कि यही मेरी आत्मा है, यही सब कुछ है मेरे लिए। तो जैसे हम देह में आत्म प्रत्यय आत्मा की प्रतीति करने में संकोच नहीं करते, जिस दिन आत्मा में आत्मा की प्रतीति करने में संकोच नहीं रह जाएगा समझ लीजिए आपका ज्ञान पक्का हो गया। इसका भी उदाहरण देते हैं कि वो कोई थे ऐसे, हमेशा अपने स्वाध्याय प्रवचन में लगे रहना, और सब में हमेशा कोशिश करते थे, वासुदेव सर्वमिति, सब में वासुदेव ही विराजमान है, अभेद दृष्टि बनाने के लिए भी तो अपनी दृष्टि तो बनानी पड़ेगी ना, तुरंत तो ये होता नहीं, जब कभी मन में राग हो द्वेष हो उस समय चिंतन करना है कि अरे जिससे मैं राग कर रहा हूं वो तो हमारी ही आत्मा है, भेद क्या है, जिससे मैं द्वेष कर रहा हूं ये तो हमारी ही आत्मा है। अच्छा राग करने में तो प्राय सबको आनंद आता है, लेकिन राग का जब उल्टा चलता है मामला तुरंत द्वेष हो जाता है, और अभेद बुद्धि से करोगे तो ये बात नहीं होगी। तो उनका हमेशा चिंतन यही चलता था, जो भी मिले आओ भगवान आओ नारायण क्या समाचार है। तो एक बार ऐसे बैठे थे और कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आ गया, और वो शास्त्रार्थी जो था उसने कहा अब हम लोग यहां बैठते हैं प्रतिदिन सत्संग करते हैं, आपसे पूछे किसके लिए आते हो? तो हम लोग हमारे एक ग्रंथ ही है जिसका नाम है अद्वैत सिद्धि, नाम सुना है अद्वैत की सिद्धि। तो यहां पर हम लोग किसके लिए आए हैं? अद्वैत को सिद्ध करने के लिए। द्वैत हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं, द्वैत तो हमारा स्वभाव है, भेद बुद्धि तो हमें बचपन से ही डाल दी गई है कूट कूट करके, ये तेरा ये मेरा। अब तो ये कहना है कि सब मेरा सब तेरा, अब कुछ है ही नहीं। तो वो जब ऐसा शास्त्रार्थ में बैठे थे इतने में कपड़ा धोकर के धोबी आया, बोले बाबूजी ये आपके कपड़े? तो कहते हैं धोबी भगवान देख रहे हो अभी शास्त्रार्थ में बैठा हूं बाद में ले लूंगा। अब वो धोबी बोलता रे बाबूजी आपने हमको भगवान क्यों बना दिया, मैं तो सामान्य धोबी, मुझे आप भगवान कह करके मेरे ऊपर क्यों पाप लाद रहे हो? वो तो बोल के चला गया। इतने में बाल काटने के लिए नाई आया, बोले छोर कर्म करना है? तो बोले नाई भगवान देख रहे हो शास्त्रार्थ में बैठा हूं बाद में बाल कटाऊंगा। नाई भी बोला अरे बाबूजी आप मुझे भगवान क्यों कह रहे हो, मैं तो सामान्य नाई व्यक्ति हूं। तो उन्होंने जो द्वैत सिद्ध करने के लिए आया था ना उससे कहा कि देख लो तुम तो इतने वर्षों तक काशी में पढ़े तभी तुमने क्या सीखा, द्वैत सिद्ध करना। हमारे यहां तो ऐसे द्वैत को नाई और धोबी भी सिद्ध कर लेते हैं, तो तुमने कौन सी बड़ी चीज सीखी है? द्वैत तो हम लोगों के अंदर पहले से ही भरा हुआ है, अब तो करना क्या है अद्वैत की सिद्धि करनी है कि कैसे वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ है तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, जहां देखू वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस दृष्टि को बनाने के लिए जो चल पड़ते हैं प्रयास करते हैं वे सब के सब मुमुक्षु कहलाते हैं। मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, मुक्त मुक्त होने की जो इच्छा रखते हैं उनको मुमुक्षु बोलते हैं। ऐसे मुमुक्षुओं को पहले अध्यारोप क्या है और आरोप क्या है, अपवाद अध्यारोप और अपवाद, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अध्यारोप और अपवाद को जिसने जान लिया उसके लिए ब्रह्म को जानना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं हम, ये भी आप लोग बहुत बार सुने हुए हो तो इसलिए इसको बता देता हूं। तत्र अध्यारोपो नाम, अध्यारोप किसका नाम है? तो सुक्तिकायाम रजतवत रज्जौ सर्पवत स्थाणौ पुरुषवत च, तीन उदाहरण दे दिया। सीपी में चांदी का दिखना, रस्सी में सांप का दिखना और ठूंठ पुरुष का दिखना व्यक्ति का दिखना, ये जैसा होता है ये सब के सब क्या है? भ्रम है। निष्प्रपंच आत्मवस्तुनि, ये जो आत्मदेव है जो परमात्मा है ये अपने आप में क्या है? निष्प्रपंच। पंच तक तो ठीक है, पंच को यदि कोई कह दे प्रपंच है तो उसको सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा पंच को प्रपंच क्यों कहा मालूम है? आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये पंच हैं, और जब ये घालमेल करते हैं तब इसका नाम क्या पड़ता है? प्रपंच। तभी लोग बोलते ये बड़ा प्रपंची है, जो प्रपंची होगा वो घालमेल करके ही व्यवहार करेगा। पंच तो बेचारे झगड़े को सुलझाते हैं, भाई पंचायत करनी पड़ेगी, पंचों के पास जाना पड़ेगा। तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांचों अलग अलग हैं तो पंच हैं, और जब ये मिल गए तो इसका नाम क्या पड़ा? प्रपंच। और ये प्रपंच कहां हुआ, तो निष्प्रपंच आत्मवस्तुनि, आत्मा जो है प्रपंचों से रहित है, और ऐसे निष्प्रपंच ब्रह्म में क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रपंच का आरोप कर दिया। और ये आरोपण वैसा ही है जो आपने सुना, अधिष्ठानत्व मात्रेण कारणम ब्रह्म गीयते। भारतीय टीम जीत गई तो भारत जीत गया, भारतीय टीम हार गई तो भारत हार गया। बस इसी प्रकार से आत्मा में हम लोग आरोप करते हैं, सुखी हो गए तो बोले आत्मा बड़ा सुखी है, दुखी हो गए तो बोले आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा को तो सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रपंच का जब आरोप हुआ, इसी का नाम है अयम अध्यारूप, इसको अध्यारूप बोलते हैं। कहां से आया भाई अध्यारूप, वस्तु अज्ञानाद आगत हो। वस्तु मतलब आत्मा के अज्ञान के कारण ये आरोप आया। यदि उस आत्मा को हम जानते होते तो इन पांचों अर्थात प्रपंच का उसमें हम आरोप नहीं करते। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि उस निष्प्रपंच ब्रह्म में जो कुछ भी हमें दिख रहा था सब हमारे द्वारा किए गए आरोपण था, प्रपंचीकरण हो गया। पंचीकरण कोई प्रपंचीकरण कह लो। तो अयम अध्यारूपो वस्तु अज्ञानाद आगत तद अज्ञानम एव, ये इसी का नाम है अज्ञान। अब जो कल बताया था उस बात को और दोहरा लीजिए, इसको तो रोज दोहराना है तभी याद होगा। सबसे अंतिम वाली बात जो कही गई है, आत्मा में जो दुख आदि हो रहा है इसका कारण है शरीर की प्राप्ति, वो ध्यान में रखना। उन्होंने ठीक पूछा था कि आत्मा में सुख दुख होता नहीं तो आरोपण है, क्योंकि शरीर में हम आए और शरीर के धर्मों का आरोपण तो हो ही रहा है ना आत्मा में, मन का धर्म, शरीर का धर्म, जाति का, वर्ण का, सबका आरोप आत्मा में हो रहा है। अर्थात आत्मा है तभी ये सब हो रहा है, और जिस दिन आत्मा इन सब से अलग है, ज्ञान हो गया, तो ये सब के सब मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं। तो आत्मा के दुखों का कारण शरीर, शरीर की प्राप्ति कर्मों से, कर्म की उत्पत्ति राग आदि से, राग आदि उत्पन्न होते हैं अभिमान से, अभिमान होता है अविवेक से, अविवेक होता है अज्ञान से, ये अज्ञान वही है। वस्तु का अज्ञान होने से इतने सारे झंझट हो गए। जिस दिन वस्तु का ज्ञान होगा तो इसी क्रम से वस्तु को जानने के बाद अज्ञान नष्ट हुआ, अज्ञान नष्ट होगा तो अविवेक नष्ट हो गया, अविवेक गया तो अभिमान भी गया, अभिमान गया तो राग द्वेष आदि भी चले गए, राग द्वेष आदि गए तो कर्म भी नष्ट हो गए, कर्म नष्ट हो गए तो शरीर भी नष्ट हो गया, और जब शरीर ही नष्ट हो गया तो अब कोई दुखों का कारण रहेगा क्या, किसी का आरोप हो सकता है? तो ये आप केवल कपाल भाती अनुलोम विलोम जैसे करते हो ना, यहां पर भी अनुलोम और विलोम दोनों में चलना पड़ेगा। इधर से आत्मा के दुखों का कारण शरीर, शरीर की प्राप्ति कर्म से, कर्म राग द्वेष से, राग द्वेष अभिमान से, अभिमान अविवेक से, अविवेक अज्ञान से, ये अज्ञान है वस्तु अज्ञानाद। तद अज्ञानम एव अविद्या, उसी को अविद्या बोलते हैं, उसी का नाम है तमो, तम इसी का नाम है मोह, इसी को बोलते मूल प्रकृति, इसी का नाम है प्रधान, इसी का नाम है गुण साम्यम, इसी का नाम है अव्यक्त और इसी का नाम है माया। इतने सारे नाम क्यों गिनाए, ये सब फिर विचार करेंगे कल। ओ